नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ए नॉन डेविल, जिसे लिखा है मालती जोशी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। ए नॉन डेविल। राघविंदर साहब की फेयरवेल पार्टी जरा ज़्यादा ही लंबी खिंच गई थी। लोग थे कि बोलते ही चले जा रहे थे। जो लोग उन्हें रात दिन कोसते रहते थे, वे भी उन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ बॉस साबित करने पर तुले हुए थे। कार्यक्रम के बाद अगर चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं होता तो कई लोग पीछे से चुपचाप खिसक गए होते। कार्यक्रम के बाद एक भीड़ से बाहर निकली और वाहनों के शोर से सात लोग तितर बितर होने लगे। चित्रा भी सबके साथ बाहर निकली, पर आज उसके पास अपना वाहन नहीं था। साड़ी पहनकर उसे एक्टिवा चलाते नहीं बनता था, लिहाजा वह सुबह रिक्शे पर ही आई थी। अभी उसी का इंतजार था, इसीलिए वह मेन रोड पर आकर खड़ी हो गई थी। एक दो मिनी बस वाले उसके लिए कुछ पल रुके, फिर निराश होकर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद एक कार उसके पास आकर रुकी और उसका दरवाजा खुला। क्षण भर को तो वो डर ही गई, पर दूसरे ही क्षण उसने चालक को पहचान लिया। वे मिस्टर कुमार थे, मिस्टर पवन कुमार। दूसरे सेक्शन में थे और सीनियर थे। योर सेल्फ मिस मजुमदार। यस सर। व्हाट, एक लिफ्ट घर छोड़ दूं? परिचय बस दुआ सलाम तक ही था, इसलिए इस प्रस्ताव पर वह असमंजन में पड़ गई। कम ऑन, क्या सोच रही हो? थैंक यू सर, उसने विनम्रता से कहा, पर आप क्यों तकलीफ करेंगे? मैं सुबह रिक्शा से ही आई थी, अभी भी उसी से चले जाऊंगी। नो प्रॉब्लम। सुबह की बात तो और है, इस समय रात के 8 बज रहे हैं। रोज पेपर नहीं पढ़ती क्या? उसने मन में कहा कि पेपर भी पढ़ती हूँ और आपकी रेपुटेशन से भी परिचित हूँ, आपकी रंगीन मिजाजी के चर्चे सुन चुकी हूँ। पर प्रगट रूप से यह कहना संभव नहीं था। वे सीनियर थे और किसी भी दिन बॉस की कुर्सी पर विराजमान हो सकते थे। फिर उसे अंग्रेजी की एक कहावत याद आ गई, ए नॉन डेविल्स इज बेटर देन एन अननोन एंजल। उसने हिम्मत बटोरी और गाड़ी में बैठ गई। दरवाजा बंद करते हुए कहा, चलिए सर। गाड़ी चल पड़ी। वह सहमी सुकड़ी बैठी रही और उन्हें घर का रास्ता बताती रही। कुछ जमा 15 मिनट बाद वह अपने घर के सामने थी। अपने राहत की सांस ली और दरवाजा खोलते हुए कहा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक कप चाय भी नहीं पिलाओगी? वह स्तंभ रह गई। अभी तो ऑफिस से इतना ठूस कर आ रहे हैं, कॉफ़ी की गुंजाइश क्या अब है? पर मना करने का सवाल ही नहीं उठा था, उल्टे कहना पड़ा, श्योर सर। मैंने सोचा कि ऑलरेडी इतना लेट हो गए, इसलिए। उन्होंने गाड़ी साइड में पार्क की और चित्रा के साथ ठीक गेट में दाखिल हुए। अपने चारों ओर देखते हुए कहा, नाइस बंगलो, तुम्हारा अपना है? नो सर, आई एम जस्ट मे टेनेंट, उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। आइए। वे उसके साथ भीतर दाखिल हुआ। पूछा, अकेली रहती हो? हाँ, मम्मी पापा इटारसी में हैं, भाई विदिशा में, आना जाना लगा रहता है। आप बैठे ना सर, उसने कुर्सी की ओर इंगित करते हुए कहा। वे प्रशंसा भरी नज़रों से कमरे का मुआयना करते रहे, फिर पूछा, नीचे वाला पूरा पोर्शन तुम्हारे पास है? नो सर, नीचे हम 3 लोग हैं, 9 पीपल। नाइस पीपल। ऊपर का पूरा पोर्शन मकान मालिक के पास है, आप बैठिए ना, उसने दोबारा अनुरोध किया। मैं जरा टॉयलेट जाऊंगा। वह तो सन रह गई। प्रस्ताव जितना अप्रत्याशित था उतना ही अशोभन। किसी अपरिचित व्यक्ति के अपने टॉयलेट में जाने की कल्पना मात्र से उसे चुरचुरी हो आई। उसका एक त्रास्त पहलू यह भी था कि वहाँ जाने के लिए उन्हें चित्रा के बेडरूम से गुजरना था। वे बेडरूम के साथ सज्जा को भी देर तक निहारते रहे। दीवार पर लगी पेंटिंग का सूक्ष्म निरीक्षण किया, पर्दों के डिजाइन की तारीफ की, फिर उनकी नज़र टीवी पर पड़ी। सैमसंग का है, कैसी सर्विस देता है? और फिर एकाएक उन्हें जैसे कुछ याद आ गया। घड़ी की ओर देखते हुए बोले, अरे आज शुक्रवार है ना, आज तो करोड़पति आ रहा होगा, देखती हो कि नहीं? हाँ कभी कभी। चलो आज तुम्हारे साथ देख लेते हैं। वो तो रात 10 बजे ख़त्म होगा, बहुत लेट हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम, वैसे भी आज घर में अकेले बोर होना ही था। मैडम एक शादी में ग्वालियर गई हैं, बच्चे भी साथ गए हैं। अब उसका माथा ठनका। जैसे ही टॉयलेट का दरवाज़ा बंद हुआ, उसने अपने ऊपर वाली निकिता को मैसेज किया, नीड यू बैडली ए चिपकू इन द हाउस कमिंग। उसका तुरंत जवाब आया और अभी बस उसने दूध चढ़ाया था कि निकिता दनदनाते हुए घर में दाखिल हुई। अरे तुम कहाँ चली गई थी दीदी? मैं तो नर्वस हो रही थी कि आज का तो करोड़पति हो गया। सोनू मोनू जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी ले आए हैं और उन्होंने बाहर वाले टीवी पर कब्जा कर लिया है। भीतर वाले पर माता राम कोई रोतला सा सीरियल देख रही हैं। मैं बस ओह सॉरी नमस्ते, उसने शायद अब कुमार साहब को देखा। चित्रा ने परिचय करवाया और बताया कि ऑफिस में एक पार्टी थी, काफ़ी देर हो गई थी इसलिए सर घर तक छोड़ने आए हैं। फिर पूछा, कॉफ़ी लोगी? बना रही हूँ, ले लूँगी, पर पहले सर के लिए कुर्सी तो ला दूँ। अब चित्रा ने लच किया कि सर ने बेड पर ही आसन जमा लिया है, समझदार थे इसलिए सारा समझ गए और कुर्सी पर विराजमान हो गए। चित्रा के मिनी डाइनिंग सेट की दो कुर्सियां भी निकिता उठा लाई ताकि सब लोग आराम से बैठ सकें। सॉरी यार, सूखी कॉफ़ी दे रही हूँ, चित्रा ने उसे कॉफ़ी पकड़ाते हुए कहा। दरअसल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही हो गया आज, मैं तो डिनर की भी छुट्टी करने वाली हूँ, कहो तो तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो करोड़पति वाले दिन 8 बजे ही खाना खा लेता हूँ। निकिता के आने से चित्रा एकदम तनाव मुक्त हो गई थी। निकिता की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके साथ विशेष टटोलने नहीं पड़ते, वह एकदम शुरू हो जाती है और फिर बोलती ही चली जाती है। आज भी वही हुआ, वह अनवरंत बोले ही जा रही थी, बेचारा टीवी पर संगीत की तरह चल रहा था। इस विषम स्थिति को कुमार साहब ज़्यादा देर न झेल सके, घड़ी की ओर देखते हुए बोले, 9:30 हो रहे हैं, अब मैं चलूँगा, बाहर ठंड भी हो रही है। वे दोनों जैसे इसी बात की प्रतीक्षा में थी। उनसे भी पहले वह उठ खड़ी हुई, फिर ठंड का बहाना बनाकर बाहर तक छोड़ने भी नहीं गई, दरवाजे से ही टाटा कर दिया। उनके जाने तक शिष्टाचार के नाते दरवाजे पर खड़े रहना पड़ा, पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई चित्रा ने दरवाज़ा फटाक से बंद कर दिया। फिर तो दोनों जो हंसी की हंसी का दौरा ही पड़ गया कि बस। कुमार साहब के जाने के बाद भी दोनों दिल खोल कर हंसी थी और बस वह बात मन से उतर गई थी। सोमवार को ऑफिस जाते हुए उसके मन में उस शाम का नामो निशान नहीं था। गुड मॉर्निंग चित्रा जी, ऑफिस के गेट पर ही शर्मा जी और त्रिपाठी जी जुगल जोड़ी ने उनका स्वागत किया। कैसी हैं? बस जी आपकी दुआ है, उसने विनम्रता से कहा। इस रस्मी दुआ सलाम के बाद वह आगे बढ़ गई तो पीछे से प्रश्न आया, एंड हाउ वॉज वीकेंड? उसे आश्चर्य हुआ, उसने वीकेंड की इतनी पूछताछ क्यों? फिर भी उसने पीछे मुड़कर सरल भाव से कहा, हम हिंदुस्तानियों का कैसा वीकेंड होता है जानते तो हैं, हफ्ते भर के कपड़े धोना, हफ्ते भर का राशन पानी लाना, चादरें बदलना, अखबार जमाना, और मेरे लिए तो महीना 15 दिन में एक चक्कर इटारसी का लगाना भी ज़रूरी हो जाता है, छुट्टियां कहां निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता। यह कहकर वह पलट कर चल दी थी कि उसने देखा कि शर्मा और त्रिपाठी ने आँखों ही आँखों में कुछ बातें की, दोनों के चेहरे पर कुटिल सी मुस्कान तैर रही थी। हो सकता है यह उसका भ्रम हो, उसने वह विचार झटक दिया और अपनी डेस्क पर आकर बैठ गई। उसे मालूम है कि वह सबसे एक सीमित दूरी बना कर रखती है तो कुछ लोग उससे खार खाए रहते हैं, पर पराये शहर में अकेली लड़की को इतनी सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। 12 बजे कैंटीन वाला छोकरा चाय लेकर आया तो शर्मा बोला, अरे यार कभी कभी कॉफ़ी भी तो पिलाया करो जब देखो चाय लेकर चले आते हो। त्रिपाठी ने कहा, भाई मेरे कैंटीन वाली कॉफ़ी में क्या खाक मजा आएगा, काफ़ी तो वो है जो कोई अपने हाथ से बनाकर पिलाए। चित्रा के कान एकदम खड़े हो गए। शर्मा कह रहा था, अरे यार अपने ऐसे भाग्य कहाँ, एक ठो गाड़ी अगर होती तो मारुति ही सही, पर कमबख्त अपनी तो दुपहिया भी आज जवाब दे गई है, वो तो आज पवन कुमार ने लिफ्ट दे दी, नहीं तो समय पर ऑफिस पहुंचना मुश्किल था। लगता है कुमार साहब को लिफ्ट देने का बड़ा शौक है, त्रिपाठी ने कहा, अपना तो पुराना यार है, साथ ही पढ़े हैं, पर देखो तकदीर वह सीनियर बन गया, अब तो कोई शक नहीं रहा ना। चित्रा जिस भ्रम को समझ रही थी वह विश्वास में बदल गया। शर्मा जी ने एकाएक कॉफ़ी की तलब क्यों हुआई यह उसकी समझ में आ गया और उनकी मुस्कान का अर्थ भी वह जान गई। क्या करे वह, उन्हें डपट दे या चुप कराए, ये बात हवाई कर रहे थे पर उनका इशारा वह समझ रही थी। कुमार साहब ने अपने दोस्त को क्या बताया उसे पता नहीं, पर जरूर मिर्च मसाला मिलाया होगा तभी दोनों इतने उछल रहे हैं। एकदम वीकेंड तक पहुंच गए। दफ्तर में तमाशा करना उसे अच्छा नहीं लगा, वह मौके की ताक में थी और उसके लिए उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ऑफिस से निकली तो देखा शर्मा जी बस स्टॉप पर खड़े हैं। अरे शर्मा जी आप बस में आ जाएंगे? बस ऑटो जो भी मिल जाए, उसने लापरवाही से कहा। बस से जाना विलो डिग्निटी है, यह सब उसे लग रहा था। कुमार साहब ने आपको वापसी में लिफ्ट नहीं दी, वो तो दोस्त है ना आपके? शर्मा पूरी तरह झेप गया, सफाई देते हुए बोला। उसने तो कहा था पर मैंने ही मना कर दिया, सुबह की बात अलग थी, हम दोनों को ही ऑफिस आना था, पर वापसी भी ज़रा मुश्किल होता है, हम दोनों के घर काफ़ी दूर दूर हैं, उसे बहुत आउट ऑफ में जाना पड़ता। तो क्या हुआ, घर पहुँच कर एक कप चाय पिला देते, बस रिक्शे के पैसे तो बच जाते, एक कप चाय पे यह सौदा पूरा थोड़ी है। शर्मा मुँह बाई उसे देखता रह गया और वह बाय बाय करके अपनी राह को होली। निश्चित था कि ये बात संबंधित व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी और वह पहुंची भी, इसीलिए कही गई थी। मंगलवार शाम ऑफिस से लौटी तो देखा कुमार साहब की नीली सेंट्रो गेट के बाहर खड़ी है। एक मन तो हुआ कि उसे नज़रअंदाज कर सीधे भीतर चले जाए, पर लगा कि ये आदमी उसके पीछे भी खटक अंदर चला आएगा, यह खतरा वह उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए गाड़ी गेट पर ही रोक दी। वे भी बाहर निकल आए। कहिए, उसने औपचारिकता को धत्ता बताते हुए कहा। यही पूछेंगी, भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी? खैर आज तो भीतर बुलाने का कोई सवाल ही नहीं है, आज तो मैंने तुम्हारे ऑटो के पैसे नहीं बचाए तो काफ़ी क्यों पिलाओगी, ठीक है ना? सॉरी सर, पर आपको याद दिला दूं कि उस दिन भी कॉफ़ी मैंने ऑफ़र नहीं की थी, आपने इच्छा जाहिर की थी तो मुझे शिष्टाचार निभाना पड़ा, पर अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि ये बात ऑफिस में प्रसारित कर देंगे तो मैं बदतमीजी पर उतर आती, आपको कॉफ़ी नहीं पिलाती। अरे वो नरेश एक नंबर का बेवकूफ़ है, बातों बातों में ज़रा सा जिक्र आ गया पर उसी को ले उड़ा, एक इनोसेंट सी बात का उसने बतंगड़ बना दिया, इडियट कहीं का। सर आपने यह तो ज़रूर बताया होगा कि कॉफ़ी आपने मेरे बेडरूम में बैठ कर पी थी, फिर वह बात इनोसेंट कहाँ रही, वह तो हॉट न्यूज हो गई, और आप यह कहना भूल ही गए कि निकिता पूरे वक्त हमारे साथ थी, ठीक है ना? निकिता, दैट चैटर बॉक्स, ओह आई सी। वैसे मुझे उसी दिन शक हो गया था कि वह लड़की अपने आप नहीं आई है, उसे बुलाया गया है, क्योंकि वह टीवी के बहाने से आई थी, पर पूरे वक्त चक्कर 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 करती रही, ना एक शब्द सुना ना एक सुनने दिया, वह बेचारी तो अपना पड़ोसी धर्म निभा रही थी। बट वाई, तुम्हें इतना पैनिक होने की क्या जरूरत थी, मैं तुम्हें खा थोड़े ही जाता, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अकेलापन बांटने के लिए रुक गया था। नो सर, आप अपना अकेलापन काटने के लिए रुक गए थे, और एक बात बता दूँ, मैं अकेली जरूर हूँ बट आई एम नॉट लोनली एंड नॉट अवेलेबल माइंड यू। कुमार साहब के चेहरे पर सफ़ेदी पुत गई थी। उन्हें उसी हॉल में छोड़कर वह गेट के भीतर दाखिल हो गई और गेट बंद कर लिया। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।